भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय एक, मुनियों की जिज्ञासा, श्लोक संख्या 15। बोलिए। यत् पाद संश्रयाः सूत मुनयः प्रशमायन सद्यः पुनन्ति उपस्पृष्टाः स्वरध्वनि आपः अनुसेवया। यत्पाद संश्रया सूत मुनया प्रशमायन सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धन्या पोनुसेवया। यत्पाद संत्रया सूत मुनया प्रशमायन सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धन्या पोनुसेवया। यत्पाद संश्रया सूत मुनया प्रशमायन सद्यः पुनन्त्युपस्पृष्टा स्वर्धन्या पोनुसेवया। बोलिए, अनुवाद बोलिए। हे सूत, जिन महान ऋषियों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही किसी को आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से तुरंत पवित्र हुआ जा सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई शूद्र हो या स्त्री या वैश्य, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह है वह भगवत धाम को वापस जा सकता है। ये जो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवद गीता में कहा गया है, स्त्री हो या शूद्र हो या वैश्य हो, कोई भी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। तो आप जानते हैं गीता में कहा कहा गया है? हाँ, 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, माँ में पार्थ विपाश्रते ये पिशो पाप योने स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति पराम गृह। कितने भी पाप योनि क्यों ना हो, और जब भगवान के चरण कमलों की शरण ले लेते हैं तो गंगा से ज्यादा पवित्र हो जाते हैं। क्योंकि यहां पर कहा गया है ये पाद संश्रया, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों की शरण ली है तो स्वर्धनि आपो, गंगा के जल से ज्यादा पवित्र हो जाते हैं। क्यों गंगा जल से ज्यादा पवित्र क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सद्यः पुनन्ति, तुरंत ही पवित्र करते हैं। जैसे कहा गया है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लव मात्र, लव तो बहुत थोड़ा होता है, शायद एक सेकंड से भी थोड़ा होता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, संपूर्ण सिद्धि हो जाती है। तो ऐसी क्या चीज है जो एक क्षण के सत्संग में जो प्राप्त होता है, जो कि बहुत समय तक गंगा के जल से भी जो नहीं प्राप्त होता, या प्राप्त होता भी है लेकिन वो चीज एक क्षण के सत्संग से प्राप्त हो जाती है। वो क्या चीज है? तुलिया में लवे नापी न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संघर्ष किम उदास से आशया। भागवत में बताया गया कि लव मात्र का जो भगवान के संगी का संग है उसकी तुलना न स्वर्गम ना पुनर्भवम, न तो स्वर्ग से हो सकती है ना मोक्ष से हो सकती है। वैसे क्या चीज है जो मोक्ष से भी बढ़कर के है? स्वर्ग तो फिर की बात ही छोड़ो, मोक्ष से भी बढ़कर के है जो कि साधु संघ के एक क्षण के सत्संग में जो प्राप्त होती है वो क्या चीज है? जो शुद्ध भक्त का एक क्षण का सत्संग है उससे क्या प्राप्त होती है? जो विशेष बात है वो क्या प्राप्त होती है? वो ये प्राप्त होती है, ये बात समझ में आती है, ये विचार आ जाता है कि भौतिक जगत में हम जितना भोगने का प्रयास करते हैं उतना ही दुख पाते हैं। ये चीज जो कि आपको बहुत लंबे समय तक गंगा जल के सेवन से प्राप्त होगा है? और फिर दूसरे साधनों की तो बात क्या है, यहां तक मोक्ष से बढ़ करके है? क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति इस विचार पर नहीं आता है कि कृष्ण के शरण के अलावा और कोई गति नहीं है तब तक वो मोक्ष से भी गिर जाएगा। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं कि आरोह कृष्ण परम पदम दधा पदम दो अनादित जिसमें दंग रहा है, आपके चरण कमलों का आदर ना करने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं, पतंती अधो अधा पतित होते हैं, मोक्ष से भी नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो वो जो है भगवान के चरण कमलों के शरण का जो विचार है ये साधु संघ के एक क्षण से भी जो प्राप्त होता है तो वो और दूसरे मोक्ष से भी नहीं। आप समझ रहे? तो ये बताया सद्या पुनन्ति उपस्पृष्ट है ना, अपनी संगत से तुरंत ही पवित्र कर देते हैं व्यक्ति को, है ना। तो आगे रूपा लिखते हैं भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जिससे ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का संकेत मिलता है। तो भगवान के भक्तों को प्रभुपाद या विष्णुपाद कहते हैं, मतलब प्रभु का मतलब भगवान और पाद माने चरण, तो जो भक्त हैं वो भगवान के चरण होते हैं या भगवान के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। विष्णुपाद प्रभुपाद का यही मतलब है, जो भगवान के चरणों में स्थिर हैं या भगवान के चरणों में जिनका निवास है। आगे अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरित हैं क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वे उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु या उप भगवान कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्कपट शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है, यही शुद्ध भक्ति मार्ग है। तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अपने गुरु को तो भगवान के समान समझता है, अपने को नहीं सोचता है कि मेरे गुरु भगवान के समान है तो मैं उनका शिष्य हूं तो मैं भी भगवान के समान हूं, नहीं, अपने को तो दासों का दास समझता है। तो इस प्रकार की गुरु परंपरा है, हर शिष्य अपने गुरु को भगवान के समान समझता है, अपने को नीचा समझता है कि नहीं। तो एक तो तात्पर्य जो कल भी कृतु प्रभु ने पढ़ा था या शायद नहीं पढ़ा था तो मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं कि प्रभुपाद जी का श्रीमद् भागवत का तात्पर्य पांचवें स्कंध के 18वें अध्याय का 11वां श्लोक का है। निस्संदेह गंगा स्नान से अनेक संक्रामक रोग दूर हो जाते हैं, किंतु इससे भौतिकता से आसक्त मनुष्य का मन स्वच्छ नहीं हो सकता, जिसके कारण भौतिक जीवन में सभी प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। गंगा स्नान से क्या होता है, अनेक संक्रामक रोग दूर होते हैं, शरीर पवित्र होता है ना, लेकिन मन अगर आसक्त है भौतिकता में तो मन स्वच्छ नहीं होता और मन की गंदगी से कई प्रकार के भौतिक जीवन में दोष पैदा होते हैं, है ना। स्वर्धनी का मतलब क्या है, स्वर्धनी का मतलब गंगा है, लेकिन वैसे स्वर्धनी का शब्दार्थ, इस शब्द कैसे बना स्वर्धनी, कोई बता सकता है? स्वर ध्वनि, स्वर माने स्वर्ग लोक, है ना। तो जो स्वर्ग में निवास करते हैं, गंगा जी स्वर्ग में भी हैं, तीनों लोगों को पवित्र करती हैं वैसे गंगा जी। स्वर ध्वनि का मतलब स्वर्ग से है, तो गंगा जी में स्नान करके कोई व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना मुश्किल है, है ना। लेकिन भगवान के भक्तों के संग से भक्ति प्राप्त होती है, ये बात जो है हमें समझनी है। अब गंगा जी जो है से पवित्र हैं भगवान के भक्त, या भगवान के भक्त गंगा जी को ही पवित्र करते हैं, इस संबंध में मैं दो घटनाएं सुनाऊंगा। एक तो है पुंडरीक की कथा। पुंडरीक जो है विट्ठल भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं। ये कहिए कि जो पंडरपुर में विट्ठल भगवान हैं, आप जानते हैं कैसे खड़े हुए हैं, कमर में अपने हाथ रखे हुए, है ना। तो वो प्रकट हुए थे पुंडरीक के कारण, है ना। तो जैसा मैंने सुना है, मैं बता रहा हूँ, तो इसमें वो घटना है कि जिससे पता चलता है कि जो भक्त हैं वो गंगा जी से ज्यादा पवित्र हैं, या गंगा जी भी ज्यादा, गंगा जी भी भक्त के द्वारा पवित्र होती है। तो पुंडरीक नाम का एक व्यक्ति था, तो पहले वो भक्त नहीं था भगवान का, वो भौतिकतावादी था, और उसके माँ बाप वृद्ध थे और वो भक्त थे, माता पिता भक्त थे। लेकिन जब उसका विवाह हुआ तो अपनी पत्नी में आसक्त हो गया, और पत्नी में आसक्त होने के कारण उसने माता पिता को अपने घर से निकाल दिया, और उन माता पिता के अकेला एक ही पुत्र था पुंडरीक, वो भगवान के भक्त थे उनके माता पिता, तो बड़े दुखी होकर के चले गए, तो काशी में चले गए बेचारे। अब कुछ दिनों के बाद पुंडरीक को बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने अपने माँ बाप को निकाल दिया, अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या करें। पत्नी कहती मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है, कि मैंने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की और घर से निकाल दिया। तो दोनों पति पत्नी माँ बाप को ढूंढने के लिए जाते हैं और काशी में जाते हैं अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए। तो रास्ते में जो है एक आश्रम पड़ा जो कुक्कुट मुनि का आश्रम था, इसमें भी मुनि कहा गया ना, यथ पाद संश्रयास्पद मुनिया, कि जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे मुनि, वे मुनि हैं। तो मुनि का मतलब जो है जिसने मन को बस में कर लिया उसको भी मुनि कह सकते हैं, या मुनि जो मौन का आचरण करता है, यानी संसार की दूसरी बातें नहीं बोलता है कृष्ण के अतिरिक्त, जो कृष्ण से संबंधित बातें हैं उनके तो और कोई बातें नहीं बोलता है, मौन रहता है, उसको मुनि कहते हैं। तो वो कुक्कुट मुनि थे। कुक्कुट मुनि जो है अपने माता पिता की सेवा करते थे, उनके माता पिता बड़े भक्त थे। तो उनके आश्रम में जब वो ठहरे, कौन, पुंडरीक, पुंडरीक उनकी पत्नी ठहरी, तो रात में वो सो नहीं पा रहे थे क्योंकि बड़ा दुख हो रहा था कि उन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, तो बहुत दुखी हो रहे थे। तो जिस समय सवेरा होने वाला था, मतलब अंधेरा ही था, तो देखा उन्होंने कि तीन स्त्रियां जो कि बिल्कुल धूल धूसरित हैं, बिल्कुल मैली कोचैली हैं, एक छाया जैसी दिखाई दी, और वो कुक्कुर मुनि के आश्रम में आकर के झाड़ू लगाने लगे। और जैसे जैसे सवेरा होता गया तो वो उन्होंने देखा कि वो तीन स्त्रियां उजली हो गई और चमकने लगी, एकदम सुंदर दिव्य रूप हो गए उनका। तो पुंडरीक जाग रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग कौन हो, और एकदम मलिन बिल्कुल गंदी आप आई थी, और यहाँ आश्रम में झाड़ू लगाने से आप बिल्कुल
चमकने लगी हूँ और बहुत सुंदर हो गई हूँ। तो एक ने कहा मैं गंगा हूँ, दूसरे ने कहा मैं यमुना हूँ और तीसरे ने कहा मैं सरस्वती हूँ। तो कैसे आप लोग मतलब इतनी मैली हैं? तो उन्होंने कहा, तीनों नदियों ने कहा कि पापी लोग हमारे जल में स्नान करते हैं तो हम दूषित हो जाती हैं, पाप से दूषित हो जाती हैं। तो हमें भी तो कोई आश्रय चाहिए जिससे कि हम अपने पापों को धो सकें। तो कुक्कुर मुनि के आश्रम में हम झाड़ू लगाने से अपने पापों से शुद्ध हो जाती हैं। तब पुंडरीक बड़ा चकित हुआ और कुक्कुर मुनि कैसे इतने बड़े भक्त बन गए, क्योंकि अपने माता पिता की सेवा करते थे वो और उनके माता पिता भगवान के भक्त थे। तो फिर पुंडरीक को और दुख हुआ कि उसने बहुत अपराध किया, अपने माँ बाप को निकाल दिया। तो फिर वो काशी में जाकर के और ढूंढते हैं और उनके माता पिता मिल जाते हैं, उनको अपने घर लाते हैं, फिर अपने माता पिता की सेवा में लग जाते हैं। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने माँ बाप की सेवा में लगे हुए थे और भगवान साक्षात जो है ना वहां पर आए पुंडरीक को दर्शन देने, उनको वरदान देने के लिए। और भगवान कहते हैं कि पुंडरीक मैं यहाँ पर आ गया हूँ तुम्हें वर देने के लिए, अब अपना काम छोड़ करके मेरे पास आओ और वर मांगो। तो पुंडरीक कहते हैं कि प्रभु अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ जो आपके भक्त हैं, तो आप खड़े रहिए। तो भगवान कहते मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? एक ईंटा उनके घर में पड़ा हुआ था तो फेंक दिया भगवान की तरफ, कहा इस ईंटे के ऊपर खड़े हो जाइए। तो ईंट को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, बिट है? और खड़े होने को कहते हैं ठल। तो बिट्ठल का मतलब है जो ईंट पर खड़े हुए हैं, तो बिट्ठल भगवान। और कमर में हाथ क्यों रखे हुए हैं? इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। और बाद में जब पुंडरीक ने पूरा सेवा कर ली अपने माता पिता की, तब आए भगवान के पास और प्रणाम की स्तुति की, नमस्कार किया। और भगवान कहते क्या वर दूं तुम्हें? तो ऐसा वरदान मांगा जैसा किसी ने नहीं मांगा। पुंडरीक ने ऐसा वरदान मांगा जैसा किसी ने नहीं मांगा। उसने क्या मांगा कि आप ऐसे ही खड़े रहो, आप ऐसे ही खड़े रहो। तो भगवान वैसे ही खड़े हुए हैं, है? जितने भी लोग आए उनको दर्शन दो, उनका उद्धार करो, आप ऐसे खड़े हो। पूरी दुनिया के उद्धार के लिए उन्होंने भगवान से वर मांगा। तो विट्ठल भगवान जो वैसे खड़े हुए हैं, वो जो मूर्ति है विट्ठल भगवान की, वो किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, वो साक्षात भगवान है। तो वैसे ही वो पत्थर हो गए हैं। तो विट्ठल इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि बिट यानी ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। तो एक ये घटना जो मैंने सुनाई, ये किस बात को सिद्ध करने के लिए? गंगा जी को भी पवित्र करते हैं, गंगा जी को पवित्र करते हैं। पापी लोग गंगा जी के द्वारा पवित्र होते हैं, लेकिन गंगा जी भगवान के भक्तों के द्वारा पवित्र होती हैं। और दूसरी और घटना है कि गंगा जी इस पृथ्वी पर आई क्यों? उनको शाप मिला था, वैकुंठ में भगवान विष्णु की पत्नी है सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा, ये तीनों पत्नियां हैं भगवान की। तो किसी कारण से गंगा जी में और सरस्वती में कुछ कलह हुआ, जिससे सरस्वती ने साथ दिया गंगा जी को कि तुम कलयुग के 5,000 साल तक पृथ्वी में रहो और पापी लोग तुम्हारे जल में अपना पाप धोएं। जब गंगा जी को यह शाप प्राप्त हुआ तो वो बड़ी चिंतित हो गई कि उनको जो है अब 5,000 साल तक कलयुग में रहना पड़ेगा पृथ्वी पर भारतवर्ष में, और पापियों के पाप धोने पड़ेंगे। तो गंगा जी भगवान के पास आती हैं और कहती हैं कि प्रभु मैं बहुत चिंतित हूँ कि पापी लोग मेरे जल में अपना पाप धोएंगे, तो फिर मैं कैसे अपने पापों को धोऊंगी, मतलब उस पाप को मैं कैसे धोऊंगी, मैं कैसे पवित्र होऊंगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो जब दर्शन करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे या तुम्हें दर्शन देंगे, तो अपने दर्शन के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा वो तुम्हें पवित्र करेंगे। तो फिर गंगा जी ने पूछा कि आपके भक्तों के लक्षण क्या हैं? तो फिर भगवान ने भक्तों के लक्षण बतलाए। तो जो पापी लोग हैं वो गंगा जी में स्नान करते हैं अपने पापों को धोने के लिए, लेकिन जो भक्त हैं जब वो गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, तो वे गंगा जी को पवित्र करने के लिए जाते हैं। वे स्नान करते हैं गंगा जी में तो गंगा जी के पाप दूर हो जाते हैं, है ना। तो इससे ये पता चलता है। लेकिन जो भक्त हैं वो ये नहीं सोचते कि वे भक्त हैं। आप समझ रहे, कोई भक्त जो है अगर अपने को सोचे कि वो भक्त है तो फिर वो भक्त नहीं है, है कि नहीं। कोई भक्त ये सोच करके गंगा जी में नहीं जाता स्नान करने के लिए कि मैं गंगा जी को पवित्र करने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है, ये मनोभावना नहीं होती भक्तों की। भक्त लोग कभी अपने को भक्त नहीं समझते, और वे गंगा जी में अगर जाते हैं स्नान करने के लिए दर्शन करने के लिए तो अपने को पवित्र करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दूसरी बात है कि वे पवित्र करते हैं गंगा जी को, लेकिन कोई भक्त ऐसा नहीं सोचता। आप सुन रहे हैं। तो ये जो है कुछ बातें हुई। अब इस श्लोक में कुछ शब्द हैं जिनकी कुछ चर्चा करेंगे। यह पाद संश्रया सूत है, सूत मतलब सोनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी से कि हे सूत मुनि यहां प्रश्मायना मुनि है, यत का मतलब जिनके और जिनके का मतलब भगवान के, इसका मतलब है इस श्लोक में बात पूरी हुई नहीं है जिनके चरण कमलों का, इसका मतलब कुछ और भी कहना होगा, है कि नहीं। तो ये श्लोक जो है ना अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा वाक्य नहीं हुआ। यत पाद संश्रया जिनके चरण कमलों का आश्रय लेकर के जो मुनि है, तभी तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मुनि की चर्चा हम कर चुके हैं, जो मननशील हो उसको मुनि कहते हैं, या जो मौनी हो मौन व्रत का है ना आचरण करे उसको मुनि कहते हैं। मौन, मौन का मतलब ये है जो कथा श्रवण करने में अपने मन को ज्यादा लगाए तो उसको भी मुनि कहते हैं, कि वो बोलता नहीं है और सुनता रहता है ज्यादा, है ना, तो उसको भी मुनि कह सकते हैं। और प्रश्मायना, प्रश्मायना का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं परमेश्वर की भक्ति में लीन। अब इसका जो है संधि विच्छेद करें तो प्रशम आयना, आयना आयन का मतलब निवास स्थान, और प्रशम का मतलब क्या है प्रकृष्ट रूपेण शमन, शम का मतलब होता है मन को बस में करना, और प्रा लगा दिया मतलब प्रकृष्ट रूपेण अच्छी प्रकार से मन को बस में करते हैं जो, या नियमों का पालन करते हैं, भक्तियों के नियमों का पालन करते हैं, तो प्रशम माने भक्ति की विधि हो गई, और आयना का मतलब निवास स्थान, वो भक्ति की विधि में ही रहते हैं, भक्ति के नियमों के अंदर ही रहते हैं। आयन का मतलब रहने वाला, ये निवास, जिनका निवास स्थान भक्ति के नियम ही है, दृढ़ता से भक्ति के नियमों का पालन करें तो प्रश्मायना। सद्यः पुनन्ति तो जल्दी ही पवित्र करते हैं उपस्पृष्टा, उपस्पृष्टा अपने संगति से, अपनी थोड़ी संगति से ही जल्दी पवित्र करते हैं। स्वरध्वनिया पूर्ण सेवया, स्वरध्वनि यानी गंगा जी का जो जल है वो बहुत समय तक सेवन करने से पवित्र करता है, तो ये बातें बताएं। अब हम थोड़ा सा पीछे आगे पीछे भी जाएंगे श्लोक के, श्लोक संख्या 14 में जो है भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ है, और इस श्लोक में भगवान के भक्तों की महिमा का वर्णन हुआ है, और पिछले श्लोक में भी यन नाम विवशोगण जिनके नाम को, तो वहां पर भी बात पूरी नहीं हुई थी। पिछले श्लोक में कहा था सोनक ऋषि ने कि जिनके नाम का विवशता से भी उच्चारण करते हुए कोई कष्ट में पड़ा हुआ प्राणी छूट जाता है, कष्टों से छूट जाता है जिनके नाम का, तभी पूरी बात तो नहीं हुई। फिर यहां कहा है जिनके चरण का आश्रय लेकर के जो भक्त है वो इतने शुद्ध हो जाते हैं कि किसी व्यक्ति को तुरंत शुद्ध कर देते हैं, गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र होते हैं, तो अभी भी बात पूरी नहीं हुई। फिर कहा कोवा भगवत स्तस्य, श्लोक संख्या 16 में अगले श्लोक में फिर बात पूरी थी कि ऐसे भगवान के श्रुणयात न श्रुणयात यथा कली मलाभयम, कौन ऐसे भगवान के यश को श्रवण नहीं करना चाहेगा। तो वास्तव में इन तीनों श्लोकों में भगवान की महिमा का वर्णन हुआ है कि जिनके नाम का ऐसा प्रभाव है और जिनके भक्तों का ऐसा प्रभाव है तो उनका प्रभाव कैसा नहीं होगा। मतलब यहां पर ये कि नाम भी भगवान के आश्रित है और भक्ति भी भगवान के आश्रित है, जब उनके नाम का ऐसा प्रभाव है और उनके भक्तों का ऐसा प्रभाव है तो फिर ऐसे भगवान के यश को कौन नहीं श्रवण करना चाहेगा। वो श्लोक संख्या 16 में वो बात जो है ना पूरी हुई है कि शुद्धि कामो न सुनयात, कि शुद्धि पाना के लिए कौन व्यक्ति है जो नहीं श्रवण करना चाहेगा, यतः कलिमलापयम् तस्य उन भगवान का। तो इसमें यस्य या यत कहा गया है, यत पाद संत्रिया यन नाम जिनका जिनका उसमें कहा उनका, तो वहां पूरी हुई बात। जहां भगवान ऐसे भगवान की यश को कौन श्रवण नहीं करना चाहेगा, तो वो मतलब श्रीमद् भागवत, जो ये श्रीमद् भागवत है जो भगवान का यश है। तो एक प्रवचन हुआ था ब्राह्मणों के पाठ्यक्रम पर 26 मई 1997 को, तो इसमें मैंने प्रवचन दिया था श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में। तो मैं इसको पढ़ रहा हूँ, वैसे इसकी और भी प्रतियां मुझे मिली हैं। तो जो ब्राह्मण हैं, विशेष रूप से जो ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण बनना चाहते हैं, वो ले सकते हैं मुझसे, लेकिन ये मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। श्रीमद् भागवत की महिमा पर एक प्रवचन था ये। ये श्रीमद् भागवत भगवान का पुस्तक रूप है, जैसे भगवान अनेक रूप धारण करते हैं ना, है ना, जैसे मुनियों के रूप में भी भगवान अवतार लेते हैं और देवताओं के रूप में भी अवतार लेते हैं, पशुओं के रूप में, मनुष्यों के रूप में अवतार लेते हैं। ऐसे भगवान ने अवतार लिया है ये पुस्तक के रूप में। ये श्रीमद् भागवत भगवान का अवतार है किस रूप में? पुस्तक के रूप में। श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को जा रहे थे तथा उद्धव जी को अपने साथ नहीं ले जा रहे थे, तो उद्धव जी भगवान के विरह से अत्यंत भयभीत हो उठे। वे बोले, हे गोविंद, आप मुझे छोड़कर अपने परम धाम को जा रहे हैं, मैं आपके विरह में कैसे जीवित रहूंगा? इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी पर भी धर्म तथा ज्ञान किसकी शरण में रहेंगे? श्री कृष्ण उद्धव जी की बात पर विचार किया, यह बात ठीक ही है। श्री कृष्ण ने अपना तेज श्रीमद् भागवत में छोड़कर अपने परम धाम को प्रस्थान किया। इसीलिए इस श्लोक याद कीजिए, भागवत का 1:3:43, कृष्णेश धामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दृश्यामेश पुराणार्को धनोदितः। श्री कृष्ण अपने परम धाम को चले गए तो अज्ञान और अधर्म के कारण लोगों की दृष्टि नष्ट हो गई। ऐसी स्थिति में अज्ञान तथा अधर्म के अंधकार को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ है। जब भगवान चले गए अपने परम धाम में तो वो दृष्टि नष्ट हो गई लोगों की कलयुग में, है ना, लेकिन फिर श्रीमद् भागवत ये सूर्य के समान है जिससे लोगों को दृष्टि प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत का ध्यान है, पादो यदि प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयो कथितो यदूरु नाभि तथा पंचम एव षष्ठो भजांतरम दोर्युगलम तथान्यम कंठस्थुराजन्नवमो यदीयो मुखारविंदम दशमं प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटपट्टकम शिरोपियं द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ये भागवत जो है ना भगवान का शरीर है, तो इसके अलग अलग स्कंध भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं। भागवत के प्रथम तथा द्वितीय स्कंध भगवान के दोनों चरण हैं, तीसरा और चौथा स्कंध उनकी दोनों जंघाएं हैं, पांचवा स्कंध उनकी नाभि है और छठवा स्कंध उनकी छाती है, सातवें तथा आठवें स्कंध उनके दो भुजाएं, नवा स्कंध उनका कंठ है, दसवां स्कंध उनका प्रफुल्लित मुख कमल है, और ग्यारहवां स्कंध उनका ललाट पटल और बारहवां स्कंध उनका सिर है। ये भगवान आदिदेव हैं, करुणा के समुद्र हैं, इनका रंग तमाल वृक्ष के समान श्यामल है तथा इनका अवतार समस्त जीवों के सोहित के लिए हुआ है। सोहित मतलब परम कल्याण के लिए हुआ है। अपार संसार समुद्र को पार करने के लिए यह सेतु है, पुल, समुद्र को पार करने के लिए पुल क्या है? श्रीमद् भागवत। ऐसे भागवत स्वरूपी भगवान को मैं भजता हूँ। यह संसार समुद्र कहलाता है जिसमें हम सभी जीव कष्ट भोग रहे हैं। ये अपार संसार समुद्र है जिसको पार करने के लिए यह श्रीमद् भागवत पुल है। समुद्र में आज तक किसी ने भी पुल बनाने का साहस नहीं किया, सुना है कभी किसी ने पुल बनाया हो? पूर्व में भगवान राम ने समुद्र में पुल बनाया था, ये पहला पुल था समुद्र में भगवान राम ने बनाया था, और दूसरा पुल अपार संसार समुद्र में श्रीमद् भागवत है, ये दूसरा पुल ये है। फिर वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल श्लोक याद कीजिए, भागवत 1:1:3,
निगम कल्प तरुर्गलितम फलम सुख मुखादिमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका।
वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह पका हुआ फल है, सुखदेव रूपी तोते के मुख के अमृत द्रव से युक्त है। इस भागवत रूपी फल के रस को हे रसिको हे भावुको इस पृथ्वी पर मरण पर्यंत पीते रहो। आलयम, यहां पर वेदों को कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष से हम जिस प्रकार के फल चाहें ले सकते हैं। यदि हम कड़वे तथा खट्टे फल चाहते हैं तो कल्प वृक्ष हमें वही फल देगा। इसमें कल्प वृक्ष की क्या गलती है? अगर आप ही चाहते हैं कड़वे फल तो कल्प वृक्ष देता है। इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में वेद भी कल्प वृक्ष के समान है। हम भी मनुष्य जीवन में कई प्रकार के फल चाहते हैं, भोग, ऐश्वर्य, स्वर्ग प्राप्ति तथा मुक्ति आदि। ये सभी फल खट्टे तथा कड़वे हैं। ये वेद कल्प वृक्ष है, आप जो फल मांगोगे वो देगा। आप अगर कड़वे और खट्टे फल मांगते हैं तो वेद देता है।